अर्हन्ताति जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल वे सयानी पूजो हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजो हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंडकुंड स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धा, आत्मज्ञान और सदाचरण से जिसका जीवन समन्वित है, युक्त है, उसका जीवन ही अच्छा बनता है या वही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। दृष्टि की निर्मलता या सच्ची श्रद्धा कैसे प्राप्त हो, अभी अपन इस बात पर विचार कर रहे हैं। हमारी दृष्टि कैसे बदले, हमारी दृष्टि में से भ्रम और संदेह कैसे दूर हो, ताकि हम संदेह से रहित सच्ची दृष्टि प्राप्त कर सकें। जरूरी है कि जो दृष्टि से संपन्न है उनके चरणों में बैठा जाए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जाए। अपने को दो बातें अगर सीखना होती हैं तो जिसको वो बातें मालूम है उसके चरणों में जाकर बैठते हैं। उसकी कृपा कैसे होगी इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं, और जैसे ही कृपा पूर्वक सामने वाला हमें जिन दो बातों को जानना चाहते थे वो दो बातें बता देता है, तो अपन कृतकृत हो जाते हैं कि हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। ऐसे ही जिसे अपने जीवन के लिए सच्ची दिशा चाहिए, अपने जीवन के लिए एक भ्रम से रहित, संदेह से रहित, वेतर्क और बेशर्त दृष्टि चाहिए, सच्ची दृष्टि चाहिए, उसे भी अपनी सच्ची देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करना होगा। लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने अकेले से नहीं होगा। उन्होंने जिस तरह अपन को उपाय बताया है, उस उपाय को जो अपन करेंगे तब दृष्टि की निर्मलता हासिल होगी। आचार्य भगवंतों ने, सच्चे देवगुरु शास्त्र ने अपन को क्या उपाय बताया? ये कि अपने जीवन में प्रयोजन भूत क्या है इसको अपन समझें, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इदम करणीयम, इदम ना करणीयम, इदम आचरणीयम, इदम ना आचरणीयम, ये विवेक अपने भीतर हो कि ये हेय है, ये उपादेय है, मुझे यह करना चाहिए, इससे मुझे वरन बचना चाहिए। व्यक्ति के भीतर अपने लक्ष्य के प्रति यदि स्पष्ट दृष्टि है कि मुझे प्राप्त करना है वितरागता को, शुद्धता को, तो मेरा संकल्प किस बात का हो? मेरा लक्ष्य तो शुद्धि की प्राप्ति है, लेकिन मेरा संकल्प जब तक मुझे शुद्ध की प्राप्ति नहीं हुई, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मुझे शुभ में ही अपना ध्यान लगाना है, ये मेरा संकल्प है। और बचना किससे है? मुझे अशुभ कार्यों से बचते रहना है। अगर इतना छोटा सा उपाय, जैसा कि आचार्य भगवंतों ने हमें दृष्टि की निर्मलता के लिए अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए बताया है, हम उसको फॉलो करें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। हम इस बात के लिए संकल्पित हो कि जो भी मन, वाणी और शरीर से हम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, शुभ ही करेंगे, और बचने की कोशिश करेंगे निरंतर पापों से, कषायों से, अशुभ से। और मेरा लक्ष्य तो शुद्ध है, वीतरागता है। अगर इस तरह का अपने जीवन में विचार आता है तो धीरे धीरे यही विचार अपनी दृष्टि को निर्मल करने में सहयोगी होगा। यही प्रयोजनभूत है। एक बार एक कमरे में एक व्यक्ति बैठा था, दरवाजे बंद थे, खिड़की जरूर खुली थी, रोशनी आ रही थी, हवा भी आ रही थी। अचानक क्या हुआ कि उस खिड़की में से, खुली हुई खिड़की में से एक चिड़िया भीतर आई। तो चिड़िया भीतर आई किस काम के लिए? कुछ खाने मिल जाएगा। वो खोजती रही कमरे में खाने पीने की सामग्री। जब उसे जो सामग्री प्राप्त करना थी वो प्राप्त कर ली तो उसने सोचा अब चलना चाहिए, लेकिन चलें कैसे, दरवाजा तो बंद है। वो दीवारों से टकराई, छत से टकराई, दरवाजे पर चोंच मारी, बंद ही है। मैं तो यहां आकर के उसने सोचा कि मैं तो इस कमरे के भीतर आके फंस गई, अब निकलूं कैसे। वो जो व्यक्ति कमरे के भीतर बैठा था वो उसकी अज्ञानता पर हंस रहा था कि देखो तो इस चिड़िया को इतनी बुद्धि नहीं है कि जहां से खिड़की में से आए हो तहीं से निकल जाए। उसको तो मन में चिड़िया को यह लग रहा था कि जिस खिड़की से आकर के मैं इस कमरे में फंस गई हूं उस खिड़की से निकल कैसे सकते। बड़ा लॉजिकल है उसका सोचना भी कि ठीक तो है, जिस खिड़की ने मुझे इस कमरे में फंसा दिया है उस खिड़की से तो मैं निकल करके मुक्त नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वो अन्यत्र से निकलने के लिए प्रयत्न करती रही और अपने प्रयत्न में असफल रही। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की उसको उड़ाने की कि खिड़की में ही बता दिया उसको कि देखो तैसे निकल जाओ, लेकिन वो तो और घबरा गई। अपन जैसे कि चिड़िया वगैरह को अपन भगाएं तो वो तो और उल्टी भागती है, डर जाती हो कि कहीं ऐसा ये पकड़ तो नहीं रहा हमारे लिए। ऐसे उसके साथ हुआ। थोड़ी देर के बाद उसका विवेक जागृत हुआ कि ठीक तो है, मैं जिस दिशा में कमरे के अंदर आकर के फंस गई हूं अगर उससे विपरीत दिशा में चलूं तो खिड़की से बाहर और इस कमरे से मुक्त हो सकती हूं। इतनी सी ही बात थी। जिस मोह के कारण मैं इस संसार में फंस गया हूं अगर वही मोह मैं छोड़ दूं तो संसार से मुक्त होने में बड़ी आसानी होगी। इतनी छोटी सी चीज, जिस कर्म के करने से मैं निरंतर कर्मों के बोझ से दब रहा हूं और संसार में जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा सह रहा हूं, अगर मेरे विवेक में, मेरी बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जाए कि जिस कर्म और मोह के द्वारा मैं इस संसार में पीड़ा सह रहा हूं अगर वही मोह धीरे धीरे कम कर दूं या उसे छोड़ दूं तो मैं आसानी से निकल सकता हूं। चिड़िया तो कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन हम तो आज दिन तक इस संसार से मुक्त नहीं हो पाए। हमने अपनी मुक्ति का उपाय तक नहीं किया। मुक्त नहीं हो पाए ये तो ठीक है, लेकिन हमने मुक्ति का उपाय नहीं किया बल्कि संसार में भौतिक सुखों में फंसकर अपना संसार ही बढ़ा दिया है। सुबह से शाम तक एक ही लगन अपने भीतर लगी रहती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्जित कर लूं, कैसे धन संचय कर लूं, जो संचित है उसे कैसे बढ़ाऊं और जो संचित है उसका संरक्षण कैसे करूं। अर्जन संवर्धन और संरक्षण में परिग्रह के ही अपन लगे हुए हैं, राग द्वेष परिणाम अपने निरंतर चलते रहते हैं। बताइए इन परिणामों के चलते क्या मैं ठीक दिशा जो मुक्ति की तरफ मुझे ले जाएगी, जो मुझे दृष्टि को निर्मल करेगी, जो मेरे जीवन को अच्छा बनाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी? नहीं। अगर हमें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें थोड़ा सा विचार करना होगा कि हम ऐसे कर्म न करें जो कि हमें संसार के दुखों को ही देने वाले हो। जितने भी कर्म हैं सब संसार के ही दुख देते हैं, अपने जब फल देते हैं वो। मैं ऐसा कर्म करूं जो मुझे कर्मों से मुक्त कर दे। देखो भगवान ने किया तो वो अपने समस्त अंतरंग के 8 कर्मों से मुक्त हो गए। ऐसा कर्म किया कि कृत कृत हो गए, अब करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। ऐसी दृष्टि जिसकी निर्मल है वही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारद तिर्यक नपुंसकस्तानि दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम न वजंती नाप व्रतिका। अब व्रति भी हो, जिसने कोई व्रत नियम न लिया हो लेकिन दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है, सम्यक दृष्टि है, तो क्या कहते हैं, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वो नरक नहीं जाएगा, तिर्यंच नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, दुष्कुल में पैदा नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा। इतनी सारी चीजें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होते ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं समझना कि जो व्यक्ति धनवान है वो दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है, ऐसे धोखे में नहीं रहना। लेकिन जो व्यक्ति दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है वो व्यक्ति दरिद्र नहीं होगा। दरिद्रता धन पैसों की दरिद्रता नहीं है भैया। महाराज अभी कह रहे थे अपन जरा दरिद्रता देखें कि जो अपनी आत्मा से बेखबर है वो तो दरिद्र है। सो अपन सब भी दरिद्रता की कोटि में आएंगे, जो जो आत्मा की रुचि नहीं रखते हैं, जो अपने आत्मा के कल्याण के बारे में दिन भर में जरा भी विचार नहीं करते। संपन्न तो वो है जो निरंतर अपनी आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं, या कि जिन्होंने अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर लिया, संपन्न तो वो ही है। अरंत और सिद्ध भगवान रोज रोज अपन की पूजा वंदना करते हैं, उनके चरणों में अपना माथा झुकाते हैं कि आप बहुत संपन्न हो भैया। अपन ने कोनो धनवान को नहीं बिठा लो वेदी पे, जिन्होंने धन छोड़ दिया उनको वेदी बिठा दिया। इसका मतलब है कि दरिद्रता का और संपन्नता का अर्थ पैसे से नहीं है, दृष्टि से है। विकलांग नहीं होगा, जरा सोचे जो व्यक्ति अपने पूरे अंग 8 सही नहीं पा पाया, उसने क्या किया होगा। कम से कम दृष्टि की निर्मलता तो हासिल नहीं की होगी, जिससे कि कर्म के उदय से ऐसी पर्याय प्राप्त हुई। अगर इस तरह अपन विचार करके, इसलिए नहीं, देखने के लिए नहीं कि कौन कैसा है, मैं दृष्टि की निर्मलता से संपन्न हूं तो इन सब चीजों को नहीं पाऊंगा, लालच नहीं दे रहे कि आप इसलिए पाओ ताकि, जैसे अपन बच्चों को कहते कि हम तुम्हें आपके अच्छे नंबर आए तो साइकिल दिला दें, तो ऐसा थोड़ी। भैया अगर दृष्टि की निर्मलता हमारे पास होगी तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप प्राप्त होने वाली चीजें हैं, अपने भीतर ही अपने स्वभाव में ये सारी चीजें प्राप्त करने की क्षमता है। लेकिन हम स्वभाव को ही भूले हुए हैं। दृष्टि की निर्मलता हमें स्वभाव से परिचित करा देती है। ऐसी दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन अपने लिए प्राप्त करने योग्य है। उसके गुणगान आचार्य भगवंतों ने तो यहां तक गाए हैं कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। बताइए, फूल करके कुप्पा हो सकता है इस गाथा को पढ़ करके सामान्य श्रावक, गृहस्थ के लिए मोक्ष मार्गी कह रहे और मुनि महाराज मोक्ष मार्गी नहीं है। अगर गृहस्थ मोह से रहित है, मिथ्यात्व से रहित है, सम्यक दर्शन से संपन्न है और मुनि महाराज जी जिनके भीतर सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं है, दृष्टि की निर्मलता नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। तो गृहस्थ श्रेय, गृहस्थ श्रेष्ठ है मोहिनो मुनि। जिस मुनि पर्याय में प्राप्त करने के बाद भी आपने जो प्राप्त करने योग्य चीज थी सम्यक दर्शन, वह प्राप्त नहीं किया तो आपका मुनिपना श्रेयस्कर नहीं है। उससे तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले गृहस्थ को श्रेष्ठ माना। भैया, इस गाथा को पढ़ करके और अगर गृहस्थ अपने आप को बहुत ऊंचा मान लेवे और अहंकार कर लेवे तो उसका तो पता नहीं होगा। इसलिए लिए नहीं लिखा, प्रशंसा करते हुए लिखा कि देखो एक गृहस्थ भी दृष्टि की निर्मलता से संपन्न हो सकता है, उस प्रशंसनीय है। तो गृहस्थ अपनी प्रशंसा सुन करके क्या विचार करे कि देखो अगर मैं दृष्टि से संपन्न हूं तो मेरी प्रशंसा हो रही, अकेले दृष्टि से संपन्न होने पर मैं आत्मज्ञान और सदाचरण के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को और अंगीकार कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। इसी तरह मोक्ष के लिए जिसने ज्ञान प्राप्त किया, आचरण भी जिसने अच्छा कर लिया बाहर से, लेकिन भीतर में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा या वीतरागता के प्रति रुचि जागृत नहीं हुई, ऐसे मुनि महाराज जी के लिए उपदेश दे रहे हैं कि भैया सब तो करो, इतना त्याग किया, घर गृहस्थी छोड़ी, इतनी तपस्या कर रहे हो, लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा टटोलो भीतर कि मैं श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूं, मैं अपने कर्मों की निर्वृत्ति के लिए कर रहा हूं, मैं अपने वीतराग स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं कि सिर्फ अपने नेम और फेम के लिए कर रहा हूं कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जाने और लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा माने, इसके लिए कर रहा हूं। अपने आत्म कल्याण के लिए अगर कर रहा हूं तो मैं निर्मोह होकर के श्रेष्ठ हो जाऊंगा। अपन को इस गाथा का अर्थ ऐसा लेकर दोनों जन को, दो ही है मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ में अगर अपन देखें तो मुनि महाराज और श्रावक श्राविका, आरिका माता जी तो मुनि के समान ही महाव्रतों को उपचार से पालन करती हैं, श्रावक पहली प्रतिमा से लेकर के और ग्यारहवीं प्रतिमा को पालन करने वाले, घर में ही रह करके दसवीं प्रतिमा तक अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं। लेकिन इस सब के पीछे मेन चीज क्या है? मेरी दृष्टि की निर्मलता। ये सब करने के बाद भी, पांच महाव्रत ग्रहण करने के बाद भी मेरे भीतर मिथ्यात्व तो नहीं पड़ा, नहीं तो मैं अपना कान अपने हाथ से पकड़ूं, कोई और से नहीं पकड़वाने का है, अपने हाथ से अपना कान पकड़ के भैया अपने को संभाल लूं। मैंने इतना सब कुछ किया, पांच महाव्रत अंगीकार किए, लेकिन मेरे भीतर से मोह गया नहीं, मिथ्यात् गया नहीं, मुझे तत्व का जैसा स्वरूप है उस पर श्रद्धान नहीं हुआ, सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर भी मेरा बाहरी बाहरी श्रद्धान है, अंतरंग में मुझे वीतरागता और कर्मों की निर्जरा प्राप्त करनी चाहिए थी, वो तो मैंने प्राप्त ही नहीं किया, संसार के ही प्रपंच में मैं उलझ करके रह गया। ऐसा विचार करें अगर तो अपने जीवन में इस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त कर सकता है। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय सनाथा महाकुला महार्था दर्शन पूता, आपके थोड़ा सा भूल गया हूं, मानव तिलका हंती दर्शन पूता, जो सम्यक दर्शन से युक्त है, दृष्टि की निर्मलता से युक्त है, वो सब चीजें आपो आप प्राप्त कर लेता है। उसे देवों के इंद्र पद को भी प्राप्त करने की क्षमता है, वो मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र चक्रमयी मान ममेय मानम, वो धर्म चक्र को धारण करके तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। सिद्ध चक्र को भी अर्थात सिद्धों के समूह में स्वयं सिद्धत्व को प्राप्त करके शामिल हो सकता है। इतनी योग्यता दृष्टि की निर्मलता में अपन कहां भूले हुए हैं, अपन बाह्य आचरण में ही भूले हुए हैं, अपने अंतरंग के परिणामों को संभालने का अपना विचार ही नहीं आता है। आना चाहिए कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं बाहर से कहे के लिए कर रहा हूं, मैं अपने अंतरंग के परिणाम संभालने के लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे को बताने के लिए मैं आचरण नहीं कर रहा हूं कि मैंने 10 उपवास करे थे, 10 लक्षण पर्व करे होंगे, हमें कहा हो तुम्हारे 10 उपवास से कहा मिलने, आपने अपने कर्मों की निर्जरा के लिए उपवास किए थे, आपने जो व्रत नियम का पालन किया है, आपने जो सदाचरण का पालन किया, अपने कल्याण के लिए किया कि संसार को दिखाने के लिए, ऐसा विचार करते समय अपने मन में आवे और अपना ध्यान अपनी दृष्टि वीतरागता की तरफ हो तो वही तो दृष्टि की संपन्नता है। 8 गुण होते हैं, जब देवों में पहुंच करके कोई दृष्टि सी की संपन्नता से युक्त जीव जाकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, अणिमा महिमा इत्यादि रिद्धियों से संपन्न हो जाता। अणिमा रिद्धि वो कहलाती जिसमें कि अपने शरीर को विक्रिया के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म बनाने की क्षमता आ जाती। महिमा रिद्धि वो कहलाती जिसमें कि अपने शरीर को इतना स्थूल, अपन पढ़ते हैं ना कि जब लंका में हनुमान जी गए थे, विद्याधर थे, उनने अपने शरीर को अणु के समान छोटा सा बना करके और छेद में से लंका के दरवाजे के उसमें से घुस गए थे, ऐसा पढ़ते हैं अपन। ये सब चीजें कैसे प्राप्त हो गई, लगती तो अच्छी है तुम्हें मिल जाती, ऐसी ऐसे कैसे मिल जाती है भैया, कहूं भरी थोड़ी है, कहूं टिकट तोड़ी है कि अपन रुपया पैसा खर्च करें सो अपन को ऐसी अणिमा रिद्धि मिल जाएगी। अरे अपनी तपस्या से, अपनी दृष्टि की निर्मलता से अपने आप प्राप्त होने वाली चीजें हैं। महिमा रिद्धि वो है जैसे कि अंदर दरबार में पहुंच करके अपना पैर कहा कि उठाओ, बड़े से बड़े योद्धा आए थे लेकिन पैर को टस से मस नहीं कर पाए, ये क्या चीज है, ये महिमा रिद्धि है कि इतना स्थूल इतना भारी कर लिया अपने शरीर को कि उसे कोई विचलित ना कर सके। लघिमा रिद्धि इतना हल्का बना लिया अपने शरीर को कि जैसे रुई यहां से वहां हवा चलने से उड़ सकती है, इतना शरीर हल्का हो गया। प्राप्ति रिद्धि वो कहलाती है जिसमें कि यहां बैठ करके भी और अपन जिनको मुनि महाराज को ये प्राप्त है, उस प्राप्ति रिद्धि के माध्यम से सूर्य के विमान को भी बिना अपोलो या बिना विमान में बैठे हुए यहीं से अपना हाथ बढ़ा करके छूने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अपन इतने उपाय करेंगे जब भी नहीं कर पाएंगे, और थोड़ी सी तपस्या दृष्टि की निर्मलता अगर अपने पास में है तो ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाती है, बताइए। और प्राकाम्य रिद्धि वो कहलाती जैसे कि इंद्रप्रस्थ भवन बनाया था देवधन ने, पानी ऐसा दिखता था कि जमीन है, और जमीन ऐसी दिखती थी जैसे पानी भरो। सो दुर्योधन जब चलने लगे तो उनको लगा कि आगे तो जमीन नहीं है, सो जैसे ही आगे चले सो तो पानी भरो तो सो गीले हो गए कपड़ा। सो जब आगे बढ़े तो उनने देखा कि ऐसा फिर से धोखा ना हो जाए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। सो समर समर के चले, सो जहां फर्श था वहां पर भी अपनी धोती ऊंची करके चलने लगे। सो लोग हंसे के ले का कर गए, इतने कौन पानी आ है वो प्राकामृद्धि वो कहलाती कि पानी पर पृथ्वी के समान और पृथ्वी पर जल के समान चलने की क्षमता प्राप्त हो जाए। इतना ही नहीं वशित्व और ईशत्व वृद्धि भी प्राप्त दृष्टि की संपन्नता से हो जाती, सारे तीनों लोकों को वश में करने की क्षमता हो जाती। अरे भैया सबको वश में करने की क्या आवश्यकता, लेकिन क्षमता ऐसी प्राप्त हो जाती जिसने अपने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया, अपने हाथ को वश में कर लिया, उसके वश में तो सब जीव हो जाएंगे, सारा लोक उसके चरणों में डला हुआ है, ऐसे वशित्व वृद्धि को प्राप्त हो जाता। ईश्वत्व जिसमें कि सब लोग उसे ही अपना प्रभु मानते हैं, उसके ही चरणों में तीनों लोक झुका हुआ है, ऐसे ईशत्व को प्राप्त कर लेता। मन चाहे रूप को बनाने की क्षमता, जिसको अपन काम रूपित्व कहते हैं, यह भी दृष्टि की निर्मलता से प्राप्त हो जाती। कितने गुण गाए जाएं दृष्टि की निर्मलता के उतने ही कम है। आपको इसलिए आवश्यक हो गया बताना क्योंकि अपन तो चमत्कार में ही विश्वास मानते हैं, अपनी श्रद्धा उसी में ज्यादा बढ़ती है कि थोड़ा सो हलवा पूरी लड्डू हाथ पे आ गए सो चमत्कार होगा, थोड़ी सी राख आ गई सो चमत्कार होगा। इसको चमत्कार मानते हो या कि अपने आत्मा में प्राप्त होने वाली शक्ति को चमत्कार मानेंगे? ये डिफरेंस अपन को अपने विवेक से दृष्टि की निर्मलता से स्वयं करना है, दूसरे के द्वारा नहीं होगा। एक व्यक्ति था, आखिरी बात सुना करके खत्म करो फिर अपन करेंगे चर्चा। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, कांच का सामान खरीदा था, सो सबरा कांच का सामान पकड़े था और चला जा रहा था। किसी व्यक्ति का धक्का लगा, धक्का लगने से वो तो नहीं गिरा लेकिन कांच का सब सामान जमीन में गिर गया। अब कांच का सामान है तो कांच की नजाकत इसमें है कि गिरे और टूट जावे, न पथरा और कांच में का अंतर भव है। तो कांच का सामान था सो नीचे जमीन पर गिरा सो सब टूट गया, सबरा सामान टूट गया, सो चुपचाप वहीं पर खड़े हो गया वो। अब सारी जनता भीड़ इकट्ठी हो गई उसके आसपास, उसने क्या कहा उस जनता से, क्या मेरे से पहले तुमने किसी मूर्ख को नहीं देखा जो सब मुझे देखने खड़े हो गए? अब बताओ। लोग तो बड़े चौंक गए कि भाई इससे पहले क्या तुमने किसी मूर्ख को नहीं देखा जो आप मुझे देखने के लिए खड़े हैं? कितनी बड़ी बात उसने कही। लोगों ने कहा कि अपने आप को मूर्ख कैसे कह रहे हो? बोले मैं अपनी मूर्खता पर हक्का बक्का हूं कि मैं जिस चीज को शाश्वत मानता था और खरीद के लाया था बाजार से कि सजाऊंगा घर में बहुत समय तक ये रहेगी, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि ये तो कांच की है और किसी भी क्षण जरा से असावधानी से गिर करके टूट सकती है, इसमें हर्ष विषाद करने की क्या आवश्यकता है? ये मुझे दृष्टि अब प्राप्त हुई, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं स्वयं कितना मूर्ख था पहले तक, और मुझ मूर्ख को देख करके तुम क्या कर रहे हो? अपन को भी अपनी मूर्खता पर दूसरा कोई कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपने आप की मूर्खता, अपने आप अपने अपना स्वयं का अविवेक अपन स्वयं देखें और जागृत करें अपना विवेक, जिससे कि हम चीजें जो नाशवान है उनको नाशवान ही माने, जो भौतिक सुख है वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा की वितरागता तो शाश्वत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। मैं उसे प्राप्त करने के लिए दिन भर में थोड़ा सा प्रयत्न करता हूं कि नहीं करता हूं, ऐसी दृष्टि अपने भीतर प्राप्त हो जाए, उसी दृष्टि से संपन्न होकर के अपन अपना जीवन अच्छा बना सकेंगे, अपना कल्याण कर सकेंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक जग, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जब जग विषय
करते हो।